नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मजबूत वैश्विक रुझान के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त देखी गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएससी सेंसेक्स 565.66 अंक बढ़कर 56,383.77 पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर व्यापक एनएससी निफ्टी 159.85 अंक चढ़कर 16,787.85 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, टीसीएस और बजाज फाइनेंस बढ़त दर्ज कराने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल और एशियन पेंट्स में गिरावट हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सोल और टोक्यो बाजार हरे रंग में थे। चीन में छुट्टी के चलते शेयर बाजार बंद थे। डॉलर सूचकांक में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में बढ़त के कारण रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे चढ़कर 77.47 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.47 पर खुला, जो पिछले बंद से 13 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.60 पर बंद हुआ था। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि डॉलर सूचकांक की कमजोरी के चलते भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले मजबूत खुला। इसके अलावा अगले कुछ सत्रों में कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी की संभावना तथा एशियाई मुद्राओं की मजबूती से भी रुपए को बल मिल सकता है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.06% गिरकर $117.54 प्रति बैरल पर आ गया। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10% की गिरावट के साथ 101.72 पर था। विशेष रसायन बनाने वाली कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को उसके निर्गम मूल्य 642 रुपए के मुकाबले 10% के प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। बीएससी में शेयर निर्गम मूल्य से 9.99% की छलांग लगाते हुए 706.15 रुपए पर खुले। बाद में शेयर का भाव 20.98% बढ़कर 776.75 रुपए पर पहुंच गया। एनएससी पर एथर इंडस्ट्रीज के शेयर 9.65% के प्रीमियम के साथ 704 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी के आईपीओ को पिछले महीने 6.26 गुना अभिदान मिला था। ओपेक और रूस सहित अन्य तेल उत्पादक देशों ने गुरुवार को बैठक के बाद तेल उत्पादन 50% बढ़ाने का फैसला किया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि ओपेक प्लस देशों ने कहा है कि जुलाई और अगस्त महीने के लिए रोजाना तेल उत्पादन में 6.48 लाख बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी, जो फिलहाल रोजाना 4.32 लाख बैरल है। कोरोना के बाद से ओपेक कच्चे तेल के दाम उच्च स्तर पर रखने के लिए लगातार मांग के मुकाबले धीमी रफ्तार के साथ उत्पादन में वृद्धि कर रहा था। अब इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमत में राहत मिल सकती है। दुनिया भर में महंगाई के पीछे एक बड़ी वजह कच्चे तेल का महंगा होना है। कम उत्पादन और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश रूस से आपूर्ति बाधित होने के कारण कच्चा तेल लगातार महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल अर्थव्यवस्था में मंदी और ग्रोथ धीमी होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में भारत, जापान, अमेरिका जैसे तेल खरीदार ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पब्लिक सेक्टर के सामान्य बीमा कर्मचारियों के लंबित संशोधित वेतन को लेकर सीपीआई के राज्यसभा सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने बीमा कर्मचारियों का वेतन जल्द संशोधित करने के लिए अपील की है। राज्यसभा सांसद बिनॉय विशम ने कहा कि 2017 में इन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन अनिवार्य किया गया था, लेकिन 5 साल बाद भी संशोधित वेतन नहीं जारी किया गया। वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि अगस्त 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को अनिवार्य किया गया था, लेकिन 5 साल बाद बीत जाने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। यह आवश्यक है कि इन कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि वेतन संशोधन जो कर्मचारियों का अधिकार है हर 5 साल में होता है और अप्रैल 2019 में शुरुआती बातचीत के बाद से रुका हुआ है। सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडियाज इंश्योरेंस कंपनी ITD, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि जल्द पेश की जाने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा से निजी डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को लेकर जो थोड़ा बहुत भी मामला बनता है वह समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर परामर्श पत्र लाने की तैयारी कर रही है। शंकर ने स्टेबल कॉइन पर भी आपत्ति जताई, जिसे एक प्रकार की मुद्रा कहा जाता है। रिजर्व बैंक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का पुरजोर विरोध करता है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इस तरह की करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, इसकी प्रकृति सट्टेबाजी की है। रिजर्व बैंक इस बारे में अपना रुख सार्वजनिक कर चुका है। हालांकि सरकार ने अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इससे पहले वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने इसी सप्ताह कहा कि वह निजी क्रिप्टो करेंसी पर जल्द परामर्श पत्र लेकर आएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।